15 नंबर के रजिस्टर में 11 पेज पर 7/88 का पैट निकला। दूसरे पेज का मध्यादि बात चल रही थी, परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। अब उन जड़ पत्तों के हिलने की बात नहीं है, ये है चैतन्य झाड़ ब्राह्मणों की दुनिया का। इसके पत्तों को डायरेक्ट बाप आकर के हिलाते चलाते हैं, वो तो समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। तो परमात्मा पत्ते पत्ते में व्यापी नहीं है, लेकिन चैतन्य पत्तों में परमात्मा की याद समाई हुई है। तो क्या परमात्मा उन पत्तों को बैठ हुक्म करेगा क्या? ये तो चैतन्य पत्ते हैं, जिनके अंदर प्रीति होती है वो ही हुक्म पालन करते हैं। तो ये ड्रामा बना हुआ है, अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वो कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वो ही चलेगा। जो यहाँ हुक्म पे चलने वाले होंगे, अनुशासन की शूटिंग करेंगे, वो वहाँ भी अनुशासन में रहेंगे। और यहाँ जो अनुशासनहीन होकर रहेंगे वो वहाँ भी अनुशासनहीन होकर रहेंगे। 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग हो रही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही वर्णों में आते हैं। 84 जन्म लेते हैं, और जो ब्राह्मण नहीं बनते वो पूरे 84 जन्म भी नहीं लेते। मान लो सेकंड नारायण है सत्युग का, अथवा सेकंड से लेकर के 8वां नारायण तक है, और उसके पीछे पीछे आने वाली जो भी परमधाम से आत्माएं हैं वो पूरे 84 जन्म नहीं लेंगी। सत्युग में तो आएंगे लेकिन पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे। तो उनके वर्णों में आने की बात नहीं है, वो पूरे ब्राह्मण नहीं बनते, तो पूरी कला के देवता भी नहीं बनते। उन नारायणों का भारतवर्ष में पूजन नहीं होता, गायन होता है सिर्फ सप्त ऋषियों के रूप में, महर्षियों के रूप में, लेकिन पूजन नहीं होता, मंदिर नहीं होते। मंदिर सिर्फ दो ही लक्ष्मी नारायण के होते हैं, संगमयुगी और सत्युगी फर्स्ट नारायण, जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, जिनके पूरे 84 जन्म होते हैं। तो औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, उनकी महिमा है क्योंकि पवित्र हैं। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कौन सिखला दे? जैसे गीता तो बहुत सुनाते हैं, परंतु तुम्हारी बात ही नहीं है। सब तो कहते हैं, फिर ये कौन है जो नई बात सुनाते हैं? सिर्फ भूलिए की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया और बाप को गुम कर दिया। किसने डाल दिया? भक्ति मार्ग वालों ने। वो तो 5-4 वर्ष के ड्रामा की बात हुई, यहाँ शूटिंग पीरियड में किसने डाल दिया? कृष्ण रचना का नाम डाल दिया, कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया और रचयिता बाप को छुपा दिया। जरूर यहाँ दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली, अधूरे नारायणों के ग्रुप में आने वाली कोई ब्राह्मण वर्ग की ही आत्माएं हैं, अधूरे ब्राह्मण जो ब्रह्मा बनाम कृष्ण का नाम ठोक देते हैं और बाप का नाम नाम निशान गुम कर देते हैं। तो गीता को खंडन कर दिया। अब तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए, ऐसे नहीं कि चलो सेकंड नारायण की डायनेस्टी में आ जाएंगे तो कोई हर्जा नहीं। सत्युग में तो आएंगे, तो सेकंड नारायण की डायनेस्टी में भी जो आएंगे अथवा ऊंच पद पाएंगे तो वो बाद में कोट पतलून मिलना हुआ, जिसको बाबा कहते हैं मानी मोचरा, सजा खाई और फिर लास्ट में थोड़ा सा मान मर्तबा मिल जाता है। तो पुरुषार्थ नीचा नहीं करना चाहिए, ऊंचा पुरुषार्थ करना चाहिए हमेशा। कौन से जन्म में आने का? 21 जन्मों में से जो पहले जन्म का डायरेक्ट सुख है परमात्मा से लेने का, वो सुख लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम कहते हो कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, तो कहाँ मिले? जरूर संगम भी कृष्ण की ही शास्त्रों में महिमा है, गायन है, पूजन है। नारद ने भी कहा हमें लक्ष्मी को वर, राधे के लिए नहीं कहा कि हम राधे को वर है। ये क्या बात हुई है? बाप समझाते हैं तुमको, कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वो है कृष्ण का दैवी गुण और कंस का है आसुरी गुण। तुम अभी हो संगम पर, शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला ही नहीं सकते। जो ब्राह्मण न कहलाए वो शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता है फिर भारत ही नर्क बनता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले सतो रजो तमो में आना ही है, जबकि वो भी चक्र में आते हैं, 4 अवस्थाओं के चक्र में आते हैं। तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अब कृष्ण तो मनुष्य है, भगवान तो होता है निराकार। निराकार मन निराकारी स्टेज वाला। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी कृष्ण को ही भगवान समझे बैठे। कृष्ण कहो अथवा उनका संगमी रूपी रूप ब्रह्मा कहो, लेकिन ब्रह्मा के जितने भी चित्र हैं वो सब साकारी स्टेज वाले। ब्रह्मा का अर्थ है बड़ी माँ, माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार। जितने भी धर्म पिताएं हैं उनको चित्र को ध्यान से देखो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, वो धर्म पिताओं के चेहरे को देखने से पता लगता है कि वो निराकारी स्टेज में टिके हुए। ऐसी निराकारी स्टेज ब्रह्मा के किसी भी फोटो में नहीं है, क्योंकि वो माता का पार्ट है, साकारी पार्ट है, निराकार ही तेज वाला पार्ट नहीं, इसलिए बाप कहते हैं भगवान है निराकार। अच्छा भला परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर कृष्ण मनुष्य कैसे सर्वव्यापी होगा? राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वो कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजरा हुजूर है, तेरे में राधे मेरे में राधे। गणेश का पुजारी होगा कहेंगे तेरे में गणेश और मेरे में गणेश। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट ही गॉड का संग है। अरे क्राइस्ट गॉड का सन था तो तुम किसके सन हो? अनेक मत मतांतर हो गए। रास्ता कोई भी पाते नहीं है, सिर्फ माथा टेकते हैं और भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे, तो उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं है, बाप को न जानने के कारण निर्धन के बन गए। फिर धनी आकर धनी का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ अपने समय पर, भले कोई कितनी भी भक्ति करे लेकिन भक्ति से भगवान खुश नहीं होता। भगवान किससे खुश होता है? भगवान को कौन प्रिय है, भक्त है या ज्ञानी? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तीसरा प्रिय कितना भी कोई पुकारे, मैं तो आता ही हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देते, फिर नंबर बार अनेक अनेक समय पर अनेक धर्म पिताएं अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वो भी सब आत्मा में बैठी हुई, फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। कौन? जो देवी देवता धर्म के थे, चाहे पक्के देवता थे चाहे कच्चे देवता, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा ही होगा, हिंदू माना हिं माना हिंसा, दू माना दूर करना, हिंदू माना हिंसा को दूर करने वाले। तो जो हिंसा को बढ़ाने वाले बन गए हैं, डबल हिंसा को बढ़ाने वाले, काम कटारी की भी हिंसा बढ़ाए रहे हैं और स्थूल हिंसा भी दुनिया में बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ रही है, वो फिर अपने को हिंदू कहलाते हैं। अब ये सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं? ब्रह्म अनुसार ऐसे ही होता रहता है, जो कुछ हो चुका है वो फिर रिपीट जरूर होगा। फिर ऐसे ऐसे हम चक्र में आएंगे, जितने जन्म लेंगे तो हिसाब निकालो, हर एक धर्म वाले के पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, आते ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। ज्वाला मन कोई स्थूल ज्वाला है क्या? है ज्ञान की ज्वाला, कोई की प्रेरणा से? शास्त्रों में किसको दिखाया है? तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली और सृष्टि का विनाश हो गया। तो तीसरा नेत्र तो त्रिनेत्रधारी को, देवता को ही दिखाया जाता है, शंकर को दिखाते हैं, यूरोप वासी यादव बांस बनाते हैं। और बाबा ने यादवों का हेड किसको बताया? सबसे पावरफुल है यादव, और जो सबसे पावरफुल सेना है उनका हेड कौन बता दिया? शंकर। हर हर बम बम, ये बम शब्द किसके साथ लगता है? जब तक ये न फटे तब तक पापों का हरण नहीं हो सकता। तो यूरोपवासी यादव बम्स बनाते हैं। ये भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। यादव भी ऐसे मानते हैं। हम जानते हैं कि इनसे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, ऐसे समझते हैं। न चाहते हुए भी ये मौत का सामान बनाते रहते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आवाज आएगा, सबका आवाज आएगा तुम्हारी तरफ। अब ही जान जाए तो सब भाग करके आ जाए तो भीड़ हो जाएगी, और यहाँ तो भीड़ भाड़ का फायदा ही नहीं। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली बने और कोई फूल बनते हैं। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझाए जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्य में सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। अब फिर बाबा खुद कह रहा है, हमारे पास आवंती ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो मम माया अच्छे अच्छे बच्चों को फारकती देवंती दिलावंती, बच्चों को खावंती। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे महारथी खत्म हो जाते हैं। महारथी भी कैसे साधारण नहीं, अच्छे अच्छे महारथी। क्यों आगे चल के क्यों? अभी माया क्या हमारे पीछे पड़ी हुई है? और आगे चल के बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथियों के पीछे पड़ेगी? बाबा सन्मुख कह रहे हैं, जो पास्ट हो गया तो फिर अब प्रेजेंट में बात समझाते, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, अब बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाए रहे। क्या कहा? चित्रों में ब्रह्मा के हाथों में क्या दिखाते हैं? वेद शास्त्र दिखाते हैं। अब 69 तक जो ब्रह्मा हुआ उसके हाथ में तो वेद शास्त्र हुए नहीं। फिर यादगार कहाँ किए हैं? वो तो हाथ में कोई शास्त्र लेकर के नहीं सुनाते थे। सुनाने वाला तो बाप था, लेकिन फिर ये यादगार कैसे बनी? ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाई है, जिनका सार बैठ सुनाते हैं। तो समझाने वाला कौन? उन वेद शास्त्रों को हाथ में लेकर पढ़ने वाला कौन? एक ही आत्मा या दो अलग अलग आत्माएं? ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल, जो बेहद के शास्त्र हैं ब्राह्मणों की दुनिया के, उनको हाथ में लेकर के पढ़ती है और शिव बाप की आत्मा जिसको बाप टीचर गुरु कहा जाता है, सतगुरु, तीनों का पार्ट एक ही आत्मा बजाती, वही आत्मा ब्रह्मा में प्रवेश करके फिर वेद शास्त्रों का अर्थ समझाती है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि बाप जब आया हुआ है तो फिर वो अपनी वाणी क्यों नहीं चलाता, अरे हमारी मुरली बैठ क्यों पड़ता है। तो परमात्मा बाप कोई बात कोई की वाणी नहीं पढ़ता, कोई भी मनुष्य की छपाई हुई या लिखी हुई वाणी नहीं पढ़ता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्सप्लेन करता है। टीचर का काम है एक्सप्लेनेशन देना, चाहे पोएट्री हो चाहे प्रोज हो, उसका अर्थ करके बतलाना, व्याख्या करके बतलाना। तो टीचर बन करके सुप्रीम सोल खुद आता है, उसको व्याख्या करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ता कौन है, पढ़ने वाली है कृष्ण की सोल जो अभी भी पढ़ रही है, क्योंकि अभी भी कोई स्वर्ग की राजधानी स्थापन नहीं हुई। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं। जगह धर्म स्थापन करने वाले के नाम पर शास्त्र बनाए, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है, हर एक धर्म का शास्त्र होना चाहिए। तो देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया है? जो गीता नाम पड़ा धर्मशास्त्र का, धर्मशास्त्र का नाम गीता पड़ा तो धर्म स्थापन करने वाला कौन हुआ? जैसे कुरान है तो स्थापन किसने किया? मोहम्मद ने आकर के स्थापन किया। मुस्लिम धर्म और धर्म शास्त्र बना कुरान, तो नाम कुरान क्यों दिया? अच्छा चलो, नहीं मालूम मुस्लिम धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का, क्राइस्ट धर्म पिता, और धर्मशास्त्र का नाम क्या दिया? बाइबल। तो ऐसे क्यों किया? देवी देवता सनातन धर्म का धर्म स्थापक, सनातन धर्म स्थापन हुआ सनत कुमार के द्वारा, और धर्मशास्त्र का नाम दिया गीता, तो ये कहां से आया? धर्म का जो शास्त्र बनता है तो जो शासन करने वाला है विधान, उसको कहा जाता है धर्म शास्त्र। शास्त्र धातु से बनता है, शास्त्र शासक, ईश्वर कहो या शासक कहो बात एक ही हो गई। तो शासक हुआ पिता, हुकुम सरकार का, राज रानी का, तो शासक हुआ पिता। और जो विधान बनता है उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। तो विधान कौन हुआ? माता। जैसे देवी देवता सनातन धर्म का धर्मशास्त्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई, भगवान ने जिसकी महिमा की, तो भगवान किसकी महिमा करेगा? भगवान का जो काम करेगा भगवान उसकी महिमा करेगा। भगवान का काम न करे तो महिमा क्यों करेगा। काम करे ज्यादा और प्राप्ति की परवाह न करे तो वो परमात्मा को बहुत प्रिय है। तो माता क्या करती है परिवार का पोषण करने के लिए। माता तो बहुत जानमाली करती है और प्राप्ति क्या करती है। वर्षा के रूप किसको मिलता है। वर्षा बच्चों को मिलता है, माँ को वर्षा नहीं मिलता। ऐसे ही बात बताई कि जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं। तो बाइबल बना, जरूर कोई बाई जी है जिनके बल पर बाइबल बना। ऐसे ही कुरान, राणा जैसी मुसलमानों में अनेक शादियां करना ये धर्म में नूद है। भारतवर्ष में समझते हैं कि स्त्री का अगर एक पति रूठ जाए या मर जाए तो उसको राण कह देते हैं, विडो हो गई, अच्छा नहीं माना जाता। और अगर वो फिर दोबारा शादी कर ले तो कैसी राण हो गई। भारतीय परंपरा के अनुसार को माना गंदी, करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, स्त्रियां जब प्रदूषित होती है तो सारी सत्य की परंपरा खराब हो जाती है, बुद्धि मलिन हो जाती है सबकी, जो भी पैदाइश होती है। तो नाम परा पुराण माना जो शासन चलेगा वो सही नहीं चल सकता परिवार का, क्योंकि बुद्धि विचारी बन गई शासन करने वाले की, तो बच्चों को सही पोषण नहीं मिल सकता। तो बताया जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं। शासक तो पिता है लेकिन घर को संभालता कौन है, माँ संभालती है। तो उसके नाम पर वो शास्त्र बनता है, उसको धर्म शास्त्र कहते हैं। धर्म माने धारणा, पुरुष में धारणा जास्ती होती है या माता में। माता में धारणा जास्ती होती है, तो माता ही धर्म शास्त्र है, धारणा का शास्त्र है, धारणा की शासन करने वाली है धारणाओं की। माँ अगर घर में अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए। तो माँ के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, बहु अनुवाद है। भगवान ने आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। भगवत गीता माने भगवान ने जिसका गीत गाया। तो बाबा मुरलियों में सबसे जास्ती गीत, सबसे जास्ती महिमा किसकी गाते हैं, किसकी महिमा गाते हैं। माता हो माता तू है जग की भाग्य विधाता, माताओं की महिमा गाते हैं। बाप भी आकर किसको बंदे करते हैं, बंदे मातरम। क्यों कहा, माताओं को ही क्यों आगे रखा, क्योंकि परिवार के अंदर माता जितना सहन करती है उतना और कोई सहन नहीं करता। तो भारत है ही मातृ प्रधान देश। तो भगवत गीता ये ठीक है। गीता की महिमा किसने गाई, भगवान ने स्वयं गाई। और जो धर्म शास्त्र है उनकी महिमा उनके धर्म पिताओं ने गाई, लेकिन गीता की महिमा स्वयं भगवान ने गाई। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और उसे पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। क्या तो कोई कहे कि हम तो शास्त्र ही पढ़ेंगे, क्या रीड करेंगे? शास्त्र रीड करेंगे। अब यहाँ कोई जड़ शास्त्र तो है नहीं, यहाँ गीता माता भी कैसी है? चैतन्य गीता माता है। भगवान भी कैसा है? चैतन्य भगवान भी गीतापति भगवान बनकर आता है, प्रवृत्ति में आकर के राजयोग सिखाता है। तो गीता माता भी चैतन्य, गीतापति भगवान भी चैतन्य, ये हमारे माता पिता है। तो माता पिता को रीड करना होता है क्या? हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं? हैं, माता पिता का भी विश्लेषण करना है। हैं, अच्छे हैं तो तुम्हारे लिए, और बुरे हैं तो तुम्हारे लिए। कल्याण तो तुम्हारा किसके द्वारा होना है? कल्याण तो बच्चों का किसके द्वारा होता है? किसी कोई दूसरा होता है जो बच्चों का कल्याण करेगा? माता पिता से जास्ती कल्याण दुनिया में कोई चाहने वाला होता नहीं। तो तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। तो तुम कहो कि हम गीता माता को बैठ के रीड करेंगे, ये ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसा है, ये ऐसा है, इससे काम चलने वाला है नहीं। वहां तो शास्त्र होता ही नहीं। कहां? सत्युग में शास्त्र नहीं होता। शास्त्र माना शासन करने वाला विधान, वहां कोई अनुशासनहीन होगा क्या? वहां तो कोई अनुशासनहीन ही नहीं होगा। तो वहां शास्त्र या संविधान बनाने की दरकार ही नहीं। ये शास्त्र वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहां से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई है अपनी मनमत से। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज करके निकालेंगे। जो भक्ति मार्ग में अभी गीता चल रही है, चाहे वो दुनिया भी भक्ति मार्ग की गीता है, चाहे ब्राह्मणों की संगमयुग की गीता है, जो अभी चल रही है खंडित की हुई गीता, वही खंडित की हुई गीता फिर निकालेंगे। जैसे कल पहले बनाई है वैसे फिर ये शास्त्र बनाएंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही आएगी। बाप समझाते हैं, सिकील ले बच्चे, मुझे बाप की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सत्युग बनाना है। उन्होंने कल्प किया है, लंबी बताई दी, सभी को घोर अंधेरे में डाल दिया। फिर कहेंगे ये सब शास्त्र झूठे हैं क्या? इस समय सभी मनुष्य मुझे हुए। इसको कहा जाता है सदगुरु बिगर घोर अंधेरा। ग्राम अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई, सिर्फ बाबा को याद करो, चाट रखो, भोजन बनाने के समय भी याद करो। भोजन बनाने के समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शुभ।
आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने इसने ही बच्चों से मिलने के लिए आए। ये रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प इसने ही बनाए देता है। कैसा स्नेह? सच्चे दिल का स्नेह सारे कल्प का इसने ही बनाए देता है। सारे कल्प का इसने ही किससे? इतने ही बाप से। सारा कल्प बाप होता भी है, बाप तो परम धाम में बैठा रहता है, सारा कल्प है। हाँ, जिस साकार में सवा जो मनुष्य शक्ति का बीज है, साकार मनुष्य शक्ति का साकार बीज, और निराकारी झाड़ का बीज निराकार ज्योति बिंदु शिव। तो बताया सच्चे दिल का स्नेह, आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेह बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह आत्मिक स्नेह अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। क्या दिल का स्नेह अगर दूसरी तरफ है और दिखावे का स्नेह परमात्मा की तरफ है तो सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखा है, मेहनत वाला है। तब अगर परमात्मा बाप के साथ मोहब्बत का जीवन नहीं तो परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह होता है। क्या परमात्मा बाप को दिमागी बच्चा प्रिय नहीं है? कैसे बच्चे प्रिय हैं? दिल वाला बाप गाया हुआ है, वो तो खुद ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि को कोई अपनी बुद्धि का वैभव क्या दिखाएगा? वो किसी की बुद्धि के अहंकार को पसंद करेगा क्या? तो परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? हैं? क्योंकि स्नेह जो है वो बट जाता है अनेकों में। लौकिक स्नेह अनेकों के साथ होता है और अलौकिक में एक बाप दूसरा न कोई। सर्व संबंध किससे?
बाप से।
अलौकिक माना फरिश्ताई, इस लोक का नहीं है तो वो बट नहीं सकता। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है लौकिक दुनिया में, और यहाँ एक बात से सर्व संबंध का इतने निभाने की बात है, तो टुकड़े टुकड़े होने की बात नहीं है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बात से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बीज से स्नेह, बीज को स्नेह का पानी दिया तो सारे वृक्ष को स्नेह का पानी स्वतः ही मिल जाएगा, क्योंकि बाप बीज है तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। कैसा रूहानी बाप बताया? ऐसा रूहानी बाप, प्रैक्टिकल स्टेज वाला बाप, प्रैक्टिकल माना साकार में पार्ट बजाने वाला परमात्मा पार्ट। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व का स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए हर कार्य को सहज बनाए देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ाए देता है। जहाँ इसलिए होता है वहाँ याद स्वतः है और सहज ही आती है। इसलिए ही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, अगर किसी की किसी से दिल लग जाती है तो न चाहते हुए भी वो याद आता है। तो ऐसे ही अगर परमात्मा स्नेह है, प्रैक्टिकल में हो जाए, दिल का स्नेह हो जाए, तो वो याद नहीं करना पड़ता, लेकिन स्वतः याद आता है। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो, अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वो रूख ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते हैं और इतने ही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाते हैं और वो मोहब्बत का फल खाते हैं। तो सहज किसके लिए होगा, दिमागियों को या दिल वाले बच्चों को? जहाँ इसलिए नहीं दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या और कैसे ये दिमाग लड़ता रहेगा। ये क्यों हुआ, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, इस तरह प्रश्न चित्त बनते ही रहेंगे और लड़ाई लगती रहेगी, संकल्पों की चक्राहट, वाचा की चक्राहट और कर्मणा की भी चक्राहट होती रहेगी। वो कहेंगे ऐसे करो, वो कहेंगे ऐसे करना चाहिए, अपने आप से भी चक्राहट होती रहेगी। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों और क्या होगी वहाँ क्यों की क्यों होगी, और जहाँ स्नेह होता है वहाँ कोई प्रकार का युद्ध नहीं होता। लेकिन लवलीन होता है, समाया हुआ होता है, जिससे दिल का स्नेह होता है, तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं हो सकता। जैसे परवाना समा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता है, न्योछावर हो जाता है। परमात्मा इसमें ही आत्मा है, इसमें ही में समाई हुई रहती है। कई बच्चे बाप से रूरिहान करते ये कंप्लेंट करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान लिया और संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता। मेहनत से याद क्यों आती है, निरंतर याद क्यों नहीं आती, बार बार याद भूलती क्यों है। तो इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक सीमित है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह ज्यादा है। मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान तो है, लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समाया जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है, लव और ला का बैलेंस बन जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो सरशब्द नहीं बनेगा, झाड़ नहीं बन सकता, और झाड़ नहीं बनेगा तो फल भी नहीं बनेगा। तो बीज को क्या चाहिए है? स्नेह का पानी चाहिए। बीज तो पका हुआ है लेकिन सच्चे दिल का स्नेह नहीं तो फल नहीं दे सकता। इस सृष्टि का बीज है प्रजापिता, और प्रजापिता तब तक है जब तक उसमें परमात्मा बाप प्रवेश है, नहीं तो किसी जन्म में कोई जानता नहीं कि प्रजापिता कौन है। ये अंतिम जन्म में ही प्रजापिता कहो, आदम कहो, एडम कहो, उसकी पहचान होती है मनुष्य सृष्टि को। लेकिन वो बीज 84 जन्मों में जन्म मरण के चक्र में आते आते पुराने झाड़ से न्यारा हो जाता है सबसे पहले। आपने देखा होगा कि जब खेती करते हैं या कोई फल का बाग लगाते हैं तो जो पहला फल पकता है उसका बीज बोया जाता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो ऐसे ही ये सच रूपी झाड़ है, इसमें भी जब परमात्मा बाप आते हैं तो जो पहले पकी हुई आत्मा होती है, तो जो पकता है पहले वो झाड़ से जुदा हो जाता है, न्यारा हो जाता है। वो पहला फल का बीज ज्यादा पावरफुल होता है, और वो बीज फल से भी अपना कनेक्शन तोड़ देता है, झाड़ से ही नहीं फल से भी कनेक्शन तोड़ देता है, बिल्कुल न्यारा और बाप का प्यारा। नाम क्या दे दिया? एकलव्य। एक को लव करने वाला, 500 करोड़ पत्तों से लव करने वाला नहीं, लेकिन इतना न्यारा होते हुए भी वो सबका प्यारा कैसे बन जाता है? तो ये दिल की विशेषता बताई। दिल वाला बाप कहा जाता है, दिमाग वाला बाप नहीं कहा जाता। तो बीज को चाहिए स्नेह का पानी। तो जितना जो स्नेह का पानी देता है, सच्चे दिल का स्नेह, उतना ही फल का अधिकारी बनता। तो ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। फल कौन सा है? इस सत्यरूपी झाड़ का फल कौन सा है? सुख और शांति। सुख शांति ही सत्यरूपी झाड़ का फल है। तो ये सुख शांति रूपी फल अगर अनेक जन्मों में लेना है तो क्या करना पड़े? उस सच्चे बाप से सच्चे दिल का स्नेह करना ही पड़े। पड़े की भी बात नहीं, पड़े वो भी मजबूरी है, ऑटोमेटिक हो तो ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए बच्चों को मेहनत लगती है। इसलिए अर्थात सर्व प्राप्ति के सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। तो दुनिया में भी देखो स्नेह की छोटी सी जिस कितना प्राप्ति का अनुभव कराती है, और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होती, कोई न कोई कमी फिर भी निकालते रहें, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो देखो आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शोर शराबा करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें समीप आता है या दूर करता है? दहेज बढ़ता जा रहा है, यह खत्म होता जा रहा है। दहेज ज्यादा दे रहे हैं और इसने ही कम होता जा रहा है। करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती है, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभव कराती है, अनुभूति कराती है, क्योंकि दिल के स्नेह में हिसाब किताब नहीं होता। और दिमागी स्नेह में तुमने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया तो हिसाब किताब होता है, उसमें हिसाब किताब बहुत होता है दिमागी स्नेह में। दिल का स्नेह पिछले हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है कि सिर्फ दिमागी स्नेह है। दिल में कहीं लीकेज तो नहीं है? जहाँ लीकेज होता है, दूसरा पेज तो बताओ क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प पात्र भी स्नेह है तो क्या हो गया? लीकेज हो गया। चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी और चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से स्नेह हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन है? प्राप्ति कराने वाला कौन है? ये भूल जाते हैं। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, चाहे कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं हमको लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है, लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प। एक के अंदर संकल्प आता है और दूसरे के अंदर संकल्प नहीं आता है, कारण क्या है? हाँ, पूर्व जन्मों का लगाव है, हमने ही बांधा है, तो हमारे अंदर संकल्प आएगा, दूसरे के अंदर संकल्प नहीं आएगा। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्मों में झुकाव। हमारे संकल्प का भी झुकाव जाएगा, बोल में भी झुकाव स्पष्ट दिखाई देगा और कर्मों में भी झुकाव दिखाई देगा। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम के लिए भरती है, सदा के लिए नहीं रहती। इसलिए सहज और निरंतर योगी नहीं बन सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है? अगर लगाव है अर्थात लीकेज, ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भल करो, लेकिन योगी बनकर के प्रयोग करो। ऐसा न हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वो मन की स्थिति को बेआराम कर दें। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रायल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी तो हम नहीं हैं, हम तो सहज योगी हैं। सहज योगी बनना तो अच्छी बात है, लेकिन योगी भी हो, जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव कर ले, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रकृति दासी अथवा वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ाती जाती है। इसलिए बढ़ा रही है प्रकृति दासी, किस लिए बनती जा रही है कि जो जितना बाप का बना है तो प्रकृति भी उसकी दासी बनती है। बाप का बच्चा बनेगा तो प्रकृति तो माता है, माता का फर्ज क्या है, बच्चे की पालना करना, तो प्रकृति स्वतः ही बच्चे की हर ख्वाहिश की पूर्ति करती है। 5000 वर्ष के ड्रामा में भी, तो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया के शूटिंग पीरियड में भी, तो वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं। कौन सी दुनिया की बात की है, ब्राह्मणों की दुनिया की बात की। लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल दे रही है, जितना जितना बाप के बने हैं उतना फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। ये सब वृक्ष की बढ़ोतरी होती कहाँ से है, बीज से ही वृक्ष निकलता है ना। सच्ची सीता बनकर के रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो सोने के हिरण का काम कर लेंगे। सीता ने क्या किया, सोने के हिरण के पीछे बुद्धि भगाई। तो ऐसे नहीं करना, इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। न कोई व्यक्ति की तरफ झुकाव लगाओ और न उसके वैभव की तरफ झुकाव और लगाओ, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहयोगी बनने के बजाय कभी सहयोगी और कभी सहयोगी, कभी वियोगी, ये दोनों ही बातों का अनुभव करते रहेंगे। कभी याद कभी फरियाद, क्या कहा, याद माना कंप्लेंट, क्योंकि जो कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लीट बाप के बच्चे नहीं होते। ऐसी अनुभूति में रहेंगे, कभी फरियाद और कभी याद, और कंप्लेंट भी कभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्ति सब होगी, चाहे साधन हो, चाहे सेवा, चाहे सहयोग, चाहे इतने है, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। प्राप्ति भी सब प्रकार की हो रही है लेकिन संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। और दूसरे भी ऐसे अनुभव करेंगे, इनको तो बहुत मिलता है फिर भी ये असंतुष्ट, इन जैसा तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा सदा अपने प्राप्ति का दुख का वर्णन करती रहेगी मिलते हुए भी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा तो दुखी कोई नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा चला जाता है, जितनी ज्यादा उसमें गैस भर गई तो ऊंची स्टेज में चला जाएगा, और गैस निकल गई तो नीचे आ जाएगा। देखने में बहुत सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। कौन है गैस का गुब्बारा जिसमें लीकेज होती रहती है, सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य की अप्राप्ति का निमित्त बनाती रहेंगे। ये ऐसा करता है, ये ऐसा होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला सकती है क्या? नहीं हिला सकती। ये सब बहाने बाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती है तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। लेकिन इस बात में सब होशियार हैं। हाँ, तो कोई एक दो की तरफ इशारा करने लग पड़े। इसलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव हो जाता है बुद्धि का। ऐसे नहीं किसी के प्रति स्नेह है तो बुद्धि का झुकाव होता है। रावण का क्या हुआ? बुद्धि का झुकाव कहाँ था? तो किस आधार पर था? ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, घृणा के कारण। तो बार बार वो याद आता रहे। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा वाला, ईर्ष्या वाला। बैठेंगे सुप्रीम सोल को याद करने और सुप्रीम सोल भूल जाएगा, याद कौन आएगा? है शंकर जी महाराज। बाप ने तो कभी कहा नहीं कि तुम अकेले शंकर को याद करो। शंकर को तो प्रजापिता नहीं कहा जाता। इसलिए दोनों को चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ। सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप ठीक कर दो, मिटा दो। तीसरा कोई बाप मुस्कराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू करे बाप। ईर्ष्या देश घृणा का हिसाब बनाने वाले कौन? आप। लगाव लगाने वाले कौन? आप। और ठीक करे बाप। चुकतू करावे वह, बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं। वो चुकतू करावे ये बात तो ठीक है, लेकिन करना किसको पड़ेगा? जिसने लगाव लगाया, जिसने हिसाब बनाया, उसी को हिसाब चुकतू करना पड़ेगा। कराने में वो सहयोग दे देगा। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। करण करावन हार कराने के लिए बांधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं? सार क्या हुआ? सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी इतना नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और इसने ही बने। और लीकेज को चेक करूं, समझा? 18 जनवरी आ रही है ना? इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है, माना दिल कहीं दूसरी तरफ तो नहीं जा रही है। तो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थी दिवस मनाए सको, इसलिए स्मृति दिलाए रहे हैं, समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं बनाना, लेकिन समान जीवन बनने का रास बनने का मनाना, सुना के बनाना और समान जीवन बना बनने का मनाना 18 जनवरी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, व्यक्ति के प्रति भी झुकाव नहीं और उसके वैभव के प्रति भी झुकाव नहीं, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी, साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्वयं में संतुष्ट, सर्व से संतुष्ट, सदा लीकेज को चेक कर लवलीन रहने वाले, ऐसे सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यारो नमस्ते।